गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने जो अड़ंगा डाल दिया, मैं वैद्य, क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपाइद सिद्ध कर रखा है दयानंद ने, और दयानंद की सोच के अनुसार इस अनुवादक ने यहां इसको ये वैद्य लिख दिया। ये कोई औषधियां की बुक थोड़ी है, ये कोई दवाइयां की किताब नहीं, ये तो परमात्मा की महिमा का गुणगान है कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं। 100 वर्षों की शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूं। और यहां ये भूल गया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। आड़ा भूल गया वो वैद्य लिखना, गलती लगी इसमें, अनुवादक वही है। अब देखना, अब और दिखाते हैं आपको, क्योंकि 2-3 अनुवादकों का हम देखेंगे तो हमारा यकीन होगा, क्योंकि इन जो आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद थे, उनका सिद्धांत था कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, वो अपाहिज है। क्या नहीं करता कि जैसे नरसी भगत की, और ये बाद में चैप्टर सुनाऊंगा, पहले ये प्रसंग बाद में सुनाऊंगा, पहले ये देखते हैं ऋग्वेद भाषा भाषण ये क्या लिखा है इसमें। ऋग्वेद का महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो केवल 1 से लेकर ये 6 मंडल का अनुवाद किया है, और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से 10 का किया है। ये कहां से छपा? ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम बिना ये व्यक्य ना था, इसका नाम लिखे बिना ये व्यक्य नहीं था। वेद संपादक है दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। इतना ये छपा कहां से है? विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, और ये कहां से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, इतने चले। अब हम इसके आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 161 पर, ये देखिएगा। यह है दसम मंडल और यह है 161 ये दूसरा मंत्र है, ये नीचे, ये दूसरा। यदि ये संस्कृत है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है यानी मर गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो मर गया है या मरने वाला है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीने के लिए बल प्रदान करूं। स्पष्ट हो गया? यहां वैद्य कित गया फिर वो, इन्होंने तो अज्ञान वर्ण तो मतलब था। अब देखना, ये एक बड़ा वेद है, बड़ी जिल्द में वेद वही है ऐसा। और कौन है इसका अनुवादक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दान संस्थान। ये महात्मा वेद भिक्षु ने इसका अनुवाद किया है, इन्हीं कार्य समाजी है ये भी। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ करोल बाग नई दिल्ली से दान संस्थान से इसका, ये इसने बिल्कुल ठीक किया है। इसका याद ना रहा होगा दान वाली बात, परमात्मा की कृपा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 161 मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, इन्होंने कुछ थोड़ा बदल जाने की चेष्टा की है, उससे बीच वाले ने स्पष्ट कर दिया, यदि वो मृत्यु उस परलोक चला गया हो, सीमा से पार परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट यानी कति मरण वाला हो, चाहे मरकर दूसरे लोक में चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टपद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा के पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग के रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। पुण्यात्मा, इस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी का इतना योगदान तो है कि अभी तक इन्होंने वेदों को जीवित रखा, इनको स्वयं वेदों का कैख का भी पता नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद तो कलयुगी महर्षि, बिल्कुल नकली डुप्लीकेट था। आज सुबह के सत्संग में आपको देखा, सतयुग के महर्षियों को पता नहीं था वेद की, वेद में क्या लिखा, वो दुर्गा की पूजा का समर्थन कर रही है और किया करते थे। अब हमने इस अध्यात्म ज्ञान को, इस नौमन सूत को सुलझाना है, उसके लिए हमने इनका सहयोग लेना है। इनका इतना सहयोग अवश्य रहा है अभी तक आर्य समाज के आचार्यों का कि इन्होंने इन वेदों को जीवित रखा। नहीं तो लोग छोटी छोटी कथा उन पर कविताओं पर पहुंच गए थे, जय गणेश देवा, 16 शुक्रवार के व्रतों गीत, कितनी पतली पतली किताब सी सब घरों में पहुंच गई थी, हनुमान 40 पर डट गए थे। लेकिन इनको स्वर्ण वेदों का कति ज्ञान नहीं था। और आज इन वेदों का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन इनको वेदों में क्या लिखा है इसका कुछ नहीं पता था, केवल अपने सट्टे जरूर मार गया ज्ञान। एक आम जन साधारण नास्तिक व्यक्ति जैसी सोच थी इसकी। इन्होंने क्या लिखा, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे रणछोड़ भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने नरसी मेहता, नरसी सेठ की हुंडी कैश कर दी थी। पहले हुंडी कैसी होती थी, एज ए ड्राफ्ट होता था। एक सेठ को किसी नगर में राजा की तरफ से मान्यता प्राप्त होती थी उसके संपत्ति के हिसाब से कि वो इतने रुपए के ड्राफ्ट बना सकता है, उनको हुंडी बोला करते। दूर देश में जाने वाले व्यापारी लोग वो पैसा उसके पास जमा करा जाते थे और जिस नगर में जाते थे उस नगर के सेठ के नाम, जो जिसको वहां के राजा ने उसको भी नॉमिनेट किया होता था, सबकी लिस्ट सबके पास होती थी, सरकारी तौर पर उनको प्राप्त होती थी, तो उसके नाम वो चिट्ठी लिख देते थे, वो ड्राफ्ट बना देते थे कि आपके इतने पैसे मेरे पास है। उनमें से कुछ अपना कमीशन काटा करते थे, जैसे बैंक काटता है। और परमात्मा ने नरसी भक्त की वो हुंडी ले ली थी। अब थोड़ी सी कथा सुनाएंगे इसकी, तब बात समझ में आएगी। अब प्रथम तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, वेद बताते हैं, और वो परमेश्वर ने ही आके की हुई है। पुण्यात्माओं, या एक प्रसंग और आ जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को भी आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था, तो पुण्यात्माओं कुछ कहते और संत सब कूप हैं और केते दरिता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। अब जैसे एक कुएं में जल है, वो कुएं का जल सीमित है, वो कुछ ही उपयोगी है, कुछ काम आ सकता है, लेकिन सिंचाई के लिए तो दरिया की जरूरत पड़े है, यानी नहर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां कहने का भाव यह है कि अन्य संत, जो संत भी हैं, ऋषि भी हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति करके कुछ अपना संग्रह कर ली थी, बैटरी चार्ज कर ली, फिर अपनी उस बैटरी से वो दूसरों को थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया आरे से चरवा के, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, और उनका सगा भांजा शुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव रोए थे, उनका कुल नाश हुआ था, और शुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए, वो नहीं जीवित कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते, केवल वो पूर्ण परमात्मा है जो आयु बढ़ा सकता है, मुर्दे को जीवित कर सकता है और आगे उसको आयु दे सकता है। ये नरसी भक्त कौन थे, ये पिछले जन्म जन्मांतर के परमेश्वर कबीर देव के किसी जन्म, जैसे आप जी हो, अब इस परमात्मा की रजा से पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और करोड़ों की संख्या में परमात्मा के भक्त बनेंगे। लेकिन पार कितने होंगे और फिर बाकी रह जाएंगे जो सच्ची लगन से नहीं लगेंगे, तो उनकी इतनी भक्ति बन जाएगी हजारों युगों तक वो ब्रह्म लोक में भी रह सकते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, वह पूंजी नष्ट होती रहेगी। और जब वो मानव शरीर में होंगे उनके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, भले ही वो साधना आन उपासना कर रहे होते हैं, अभी तक ये आन उपासना का दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन जिनके पुण्य थे पिछले, वो किसी भी देव की साधना करते थे, कोई आपत्ति आती थी, रोते थे, तो वो परमात्मा कबीर देव आकर उन पुण्यात्माओं की मदद करता था, क्योंकि वो उनके बालक रहे हैं कभी किसी दिन में। और वो भोला जो समझता था, मैं ये पत्थर पूज रहा हूं, शायद मुझे इससे लाभ हो गया, इससे ही लाभ हो रहा है। जैसे दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करे थे, शंकर भगवान की पूजा करे थे, हनुमान जी की पूजा करे थे, और सारे सुख होते चले गए। और हम ये सोचा करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मौज मचा दी, अब पता चला कि तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने किया वो ही दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे नरसी जी बहुत बड़ा सेठ था, 56 करोड़ की संपत्ति उस समय थी, जो आज 56 अरब की कह सकते हैं। और इतना कंजूस था कि 2 पैसे दान नहीं करे था किसी ने, क्योंकि जितनी माया बढ़ती है उतनी इसकी कंजूसी साथ बढ़ जाती है, और ये माया इसकी दुश्मन होती है, जीव की सबसे बड़ी शत्रु ये माया ही होती है। तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ नरसी। वहां पर ब्राह्मण लोग जाते थे और दान करने वालों से दक्षिणा लेते थे, परमेश्वर ने भी एक ब्राह्मण रूप धारण किया और कहा सेठ जी दक्षिणा दे दे। सेठ जी बोला दक्षिणा कोनी भूल आया गर्भ में। परमात्मा ने ब्राह्मण रूप में कहा सेठ जी गंगा में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक दान नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कर दे दो कुछ दान है, न बोला चुपचाप बैठी रहे, गणी ना बोले, मैं आप निमट लूंगा इसने। आखिर में ये कहने लगा वो सेठ के ब्राह्मण पैसे भूल आया मैं घर पर, यहां लाया कोनी। तो कहने लगा भाई उधार कर ले, भगवान बोला उधार कर ले। अब सेठ बोला ठीक है उधार कर लेता हूं, बोल कितना दान करेगा? 1 टका दूंगा, 1 टका, चल 1 टका दे दे, पक्की जबान पक्की जबान। अब पैदल आते थे पहले, और वो भी तो खासकर कंजूस था, 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। घर आया गंगा का स्नान करके, घर में प्रवेश किया था, जाकर गठड़ी रखी थी, इतने में ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा ने दस्तक दे दी। नौकर आए और नौकरों ने कारण पूछा कौन हो, कहां से आए हो, क्या उद्देश्य है सेठ से मिलने का? परमात्मा ब्राह्मण रूपधारी ने कहा कि भाई सेठ जी ने मेरा 1 टका उधार कर रखा है, दान करना था, और याद दिलाइयो सेठ जी का कि ब्राह्मण आया है। नौकरों ने जाके कहा कि जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई 1 टका दान करने की कह रखी होगी। अब नरसी ने सोचा भाई यो अच्छा व्यक्ति साथ साथ आ लिया। सेठ कहने लगा अपने नौकरों से ये कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जबर है, और ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तब दूंगा। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है मैं यहीं बाग में लेट जाता हूं, स्वस्थ हो जाएंगे तब सेठ जी मैं अपना दक्षिणा लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आया जाता। अब नरसी का बाग था, उसी में परमात्मा ने बिछा लिया बिछोड़ा और लेट गए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सेठ जी माए टट्टी पेशाब करे, उड़े बना रखे खड्डा एक उसमें डाल दे। अब 3रे दिन भी उसने फिर कहा जाकर फिर दस्तक दे दी कि क्या मेरा 1 टका भाई कहो सेठ ने मेरा दक्षिणा देवे। सेठ ने कहा नौकरों से ये कह दो कि सेठ जी की मृत्यु होगी। अब लाला जी ने सोची आज यो 1 टके की जिद लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की जिद लगा ले, इसने तो रास्ता पा गया है, इसने तो स्ट्राइक कर दी, मैं भी दू नहीं टका इसको। अब सेठ के बारे में कह दिया नौकरों ने कि सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण आप जाइए, हमें बड़ा शोक है। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले भाई मेरा तो यजमान है ये, और बड़ा दुख हुआ मृत्यु होगी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब फिर बैठ गए वरने आगे। अब सेठ जी को जब संदेशा मिला कि उन्होंने ये उत्तर दिया है, तो नरसी कहने लगा नौकरो ऐसे करो तुम लकड़ियां ले जाना शुरू कर दो चिता की तरफ। कुछ दूरी पर होती थी चिताएं, गांव से बाहर होती हैं। ये यूं सोचेगा कि सचमुच मर गया, यूं चला जाएगा। अब उन्होंने लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, लकड़ियां ढोने लगे तो भगवान वही बैठा रहा कि गया नहीं, कि ना जी नहीं गया, वो तो बैठा है, मेरी अर्थी बना लो। वो बना लिया जनाजा और धर लिया सेठ को मर्द के शव की तरह, और कह निकल लिए चलो मुझे चिता पर। अब चिता पर लकड़ी भी रख दी, सेठ का वो जीवित सेठ भी रख दिया मर्द के तरह के ले गए थे। परमात्मा ने भी ले लिया की करगा लठ और कंधे पर धर लिया लकड़ी ले, अंतिम संस्कार कराने के उद्देश्य से एक लकड़ उठा लिया कि भाई हम भी अंतिम संस्कार में कुछ योगदान करेंगे। हर पहुंच गए लकड़ी लेके वहां लाला जी दो रहे। अब लाला जी से कहा कि सेठ जी भैया मैंने तेरा टका माफ कर दिया, तू आत्महत्या मत करे। सेठ जी ने बोला साची कह है, कहा साची कहूं भाई, कत्ती तेरा टका माफ कर दिया, ठीक से तो जा तू अपना काम करे। परमात्मा बोले अच्छा जी मैं चलता हूं। वो ब्राह्मण रूप धारी परमात्मा चले गए। उधर लाला जी ने अपने नौकरों से कहा कि सारी लकड़ी ठा लो उल्टी कदे नाश हो जा। वो सारी लकड़ी वापस ले उठवा कर थोड़ी बहुत बची थी उसने आप ठा रहा, इतने टुकड़ा नहीं, इतना कंजूस। और एक लड़की थी उसका विवाह कर दिया था और आगे कोई पुत्र भी नहीं था, और चीचड़ बना बैठा उसका संग्रह करें बैठे 56 करोड़ संपत्ति ने उत्तर आगे जब। अब सेठ जी ने सोचा ले वह कई दिन हो गए सैर सपट्टा करे, अत दूर तक घूम का आऊंगा। वो अगले दिन सेठ जी तो निकल गया सैर सपट्टे को, पीछे तो परमात्मा नरसी रूप बना के नरसी के घर में प्रवेश कर गया। नौकर नहीं पहचान पाए और नौकरों से ये बोल दिया भाई आज वो ब्राह्मण था ना ब्राह्मण, वो बहु रूपिया है, आज मेरा रूप बना का होगा, उसको यहां से कह देना तू चला जा राजी खुशी, और नहीं मानना तुसने कह दिए आज तेरा लठ मार देंगे दो चार, या तो तू चला जा। अब वो सेठ आया खूब उतार ही रहा था अपने वापस घूम फिर के, और द्वार पर खड़ा पहरेदार पक्का कर दिया नौकर को। नौकर कहने लगा ओ बे बहु रूपी खड़ा हो जा वहीं पर। नरसी ने सोचा किसी और को बोल रहा, पीछे ने देखा कि मैं तेरे को कह रहा हूं। नरसी कहने लगा नौकर का नाम लेकर अरे करोड़ी तू क्या क्या बक रहा है, अब तू वहीं खड़ा हो जा बस, इतनी ठीक है तेरे लिए, तूने हमारे सेठ के नाक में दम कर रखा, कभी तू ब्राह्मण बन के आता है कभी तू नरसी रूप बना लेता है, हमारे एक सेठ अंदर है उनका आदेश हो गया हाज कि तू अगर ठीक से नहीं मानेगा तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौन 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 अंदर है हमारा सेठ। उसने सोची बात बिगड़ गई भाई, वो तो आज मेरा रूप बनाकर अंदर चला गया। अब नरसी ने इसी में भलाई सोची कि तू पट्टे बिगाई अपना वापस हो ले। उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहां अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और भाई राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जप्त कर ली नरसी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब वही जो एक पैड होती थी, रिकॉर्ड होता था, उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लाला, लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिसे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सके। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सके। अब जो ओरिजिनल नरसी था उसने बता दिया, जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मैंने मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना इतना हुआ था। और बता भाई, और भी और तो मेरा याद नहीं। फिर उप परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण तू, क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा, जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो, लगे सारी पढ़न एज इट इज। पांच चार पेज जब जो के तो बता दिए, ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने, और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जब यू ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग दया से तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव के गोरे जाके माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, अन्यो सोचा ही भगवान या के बनी, आज क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास। और देख ये कौन से धर्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे ओ ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे, सेठ जी सुना क्या हाल है। इन्हों देख के इन्हों वाला दुश्मन, या तो जी लेने दे मुझे तू, यहां भी हाल पूछण आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला, या थी तो मेरी, दुश्मन यतन अड़प ली। तो परमात्मा बोला, नरसी या पहले भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों अनक हो। तो परमात्मा ने दो घंटे उसको प्रवचन किए और कहा, भाई मैं साधु संत फकीर हूं, तेरे हित के लिए तुझे ये ज्ञान और ये लीला मैंने की है, तेरी तो दुश्मन से या माया। अरे क्या कर इकट्ठे, तूने एक नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया उसका, और कुछ दया दाता की पिछले संस्कार अंगड़ाई लेते हैं। तब नरसी बोला, भगवान अब के बने मेरे थे, के भी एक शर्त पर तुझे सारी संपत्ति दे दूंगा, जब तू इसने दान कर दे, अपना बोझ हल्का कर ले, पाप कम हो जा तेरे, नितन तो नरक डो दिया बेटा। नो बोला, जी एक पर दया कर दो, सारी कर दूंगा कल्याण, इतना खुल गई मेरी। ऐसे ही कर दिया गया। नरसी ने सारा भंडारे कर दिए, गरीबा में बांट दी, यानी वह कति फुर फुर कर दी सारी, जंगल में जाकर बैठ गया और वहां एक झोपड़ी डाल ली, पति पत्नी दोनों रहने लग गए। अब गरीब आदमी के पास कौन आओगे नगर का, 15-16 अंधे थे, अंधे आसपास के उस नगर के सब मिलकर वहां आ जाते, परमात्मा की चर्चा करते, नरसी का दिल डांटते और कहते, नरसी वो साधु संत नहीं था भाई, वो भगवान था, और तेरे को तेरी आंख खोल गया। नरसी बोला, भाई कति आंख खोल गया, मैं तो नरक डोग था, ऐ तेरा जज भैया, ना मेरा अग्गे ना पाछे बेटी सी शादी कर दी, ये सारे जो है ना मेरे कुल के लोग बांटो और गदा मैं बनू। अब क्या होता है, एक दिन चार संत आगे और उन्होंने द्वारका जाना था, नरसी से कहा, क्योंकि पहले नरसी का बोलबाला था, उसकी हुंडी चला करती थी, फिर वो हो गया कंगाल, हुंडी उसकी रिजेक्ट होगी, उस लिस्ट से निकाल दिया। वो संत गांव में आए और पूछा, भाई नरसी कहाँ है, कि नरसी तो भाई बाहर जंगल में बैठा है, झोपड़ी डाल रखी है, क्या काम था कि हमने हुंडी बनवानी थी। तो नगरम के लोग भी मजाक कराया करें भक्तों के साथ, विशेष कर ये दुर्भाग्य होता है, और अपने नगर के वाले के साथ तो और ज्यादा। तो उन्होंने मजाक कर दिया कि नरसी भाई हुंडी तो बनावे है पर नखरे करे आजकल, आप वहां जाओ नरसी पर हुंडी बनवा लो लेकिन नटेगा वो जाते ही, पर तुम करड़े हो जाइयो जो बनाओगा। अब वो वहां गए चारों भक्त, उन्होंने कहा लाला जी हमने द्वारका जाना है भगवान के, वहां तीर्थ यात्रा करके आवांगे, 500 रुपये हमारे पास, इनको तू हुंडी बना दे, रस्ते में कोई चोर चुरा दे बदमाश खोज ले छीन ले हमारे थे। अब नरसी कहने लगा महात्माओं मैं मेरी हुंडी रिजेक्ट हो चुकी है, अब मैं हुंडी नहीं बना सकता। चारवा की त्योड़ी चटगी, कहने लगे तू सचमुच नगर वाले ठीक ही कह रहे थे, तू आज पहले वाला नरसी नहीं रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू साधु संतों के साथ मजाक करता है। अब नरसी भी जान गया कि इनके तो भाई चाबी भर रखी किसी ने, और ये इसे अगर तत ये कैसे मनमानी शराब दे दे। कहने लगे महाराज नाराज ना हो, लो 500 रुपये, वो 500 रुपये धरे रखे थे, लेकर कागज कागज लाओ, वो कागज ले आई और लिख दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, ये नरसी श्री कृष्ण का पुजारी था, अपन आत्मा हम भी श्री कृष्ण के पुजारी थे, लेकिन ये पता चला हमारा तो साथी पहले भी वही था, अब तो आंखें खुल गई, मोतियाबिंद खत्म हो गया हमारा अज्ञान का। तो उसने श्री सांवल सहा नामक सेठ, सांवरिया सेठ यानी कृष्ण, काला कहो चाहे कृष्ण कहो, कृष्ण माने काला होता है और सांवला माने भी काला होता है, सांवल सहा यानी सांवल सेठ के नाम टू द दशरथ ख्या उसके नाम हुंडी बनाया कर उसी तरह बना दी, और कह दिया कि आपके 500 रुपये मेरे पास सुरक्षित हैं, आप इन महात्माओं को 500 रुपये प्रदान करने की कृपा कीजिए। साधु संत ले गए उस ड्राफ्ट को लेकर द्वारका पहुंच गए, उधर से नरसी ने 500 रुपए का भंडारे का सामान मंगा लिया, दाल चीनी चावल आटा नमक मिर्च सब्जी तो सब मिला के और उसका भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया भक्तों को साधु संतों को गरीबों को। अब वहां जब वो पहुंचे चारों संत महात्मा भक्त, उन्होंने वहां पूछा द्वारका नगरी में जाकर कि भी यहां कोई सावल नाम का सेठ है, सावल नाम का कोई सेठ तो नहीं है, पर काम क्या है आपका कि हमने उंडी कैश करानी थी, किसकी बनाई हुई है? उन्होंने बता दिया कि वो सामने एक हुंडी उसकी चलती है, उसके पास जाओ। वो सेठ के पास गए, उस सेठ ने देखा कि ये तो नरसी की हुंडी है, नरसी की हुंडी नहीं चलती है, रिजेक्ट हो चुका है, देखो ये लिस्ट में लिखा है, तुम्हारे साथ धोखा कर दिया महात्माओं, वो तो ठग झूठा कपटी आदमी हो गया। अब वो महात्मा न्यो कह भाई ऐसा आदमी तो नहीं लगे था, उनका ना जचिया बात, वो आदमी झूठा कपटी है, पर हमने घना जोर दे दिया और वापस जावांगे, हमारे 500 रुपये पावेंगे उसके पास रखे हुए, उसने डरते ने लिख दी होगी, लेकिन अब कैसे गुजारा करें? बन 2, 3, 4, 10, 20 सेठों को से पूछा, सब ने यही जवाब दिया। नगर से बाहर जाकर और उस समुद्र के किनारे बैठ गए और माथे माथर मार दिया कर लिया नू। उधर से नरसी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि परमात्मा ने आके भक्तों को पैसे दिए या नहीं, देखा कि वो तो मायूस हुए बैठे हैं, तब उसने सोचा कि गलती बन गई हमारे से, परमात्मा आए क्यों नहीं। अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान आया था, आटा नमक मिर्च जो भी था, चावल चीनी दूध, वो कोई बचा तो नहीं है? उसकी पत्नी ने कहा कि और तो कुछ नहीं बचा है, केवल पलोथन बचा है। पलोथन, पलोथन क्या होता है? जैसे रोटी बनाते समय सूखा आटा थोड़ा सा रख लेते हैं अलग से, और उसमें लोई बनाकर उसमें ऐसे दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर ऐसे पोया करते हैं ताकि वो हत्था गना चपके, तो वो पलोथन यानी वो थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ था। नरसी बोला इसकी रोटी बना। वो रोटी बनाई तो चार रोटी बनी उसकी। उधर से परमात्मा ने लीला की, एक राह चलता महात्मा साधु रूप बना के द्वार पर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई भूख लगी है, कुटिया के सामने झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। नरसी बोला आ जाओ महाराज बैठो। वो चार रोटी बना रखी थी, चारों दे दी, अब खाओ महाराज। अब खा कर रोटी पी कर पानी परमात्मा जो साधु रूप में था चल पड़े। और वहां क्या हुआ, उधर जाकर के सावल नामक एक मारवाड़ी सेठ दोनों कान्ना में तक कलम टांग रखी, इतना बड़ा साफा और दोरा धोती जैसे डबल ये राजस्थानी बुजुर्ग बन जा करें इस तरह की वेशभूषा करके, और वहां पहुंच गया महात्माओं के पास, प्रकट हो गया कि कबीर परमेश्वर। और कहने लगा महात्मा जी कैसे बैठे हो? अक्सेठ जी के बैठे हैं, बस पूछो मत, ऐसे ऐसे समस्या आ गई। और नरसी व्यक्ति तो लगा है अच्छा, हमने ज्यादा जोर दे दिया, उसने कुंडी बना दी, और यहां सावल नाम का कोई साहूकार को नहीं, और अब हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमने अपना सैर सपाटा करना था, तीर्थ यात्रा यहां देखनी थी, घूमना था। तो परमेश्वर बोले भाई कौन कहे सावल सा सेठ को ना इस द्वारका में मैं रहा, अक आप हो? हक हाँ भाई मैं हूं। अक सचमुच अगर वो झूठ बोल रहा हूं मैं, लो कहा वो ड्राफ्ट दो मैंने वो उंडी दे दी, लो जी आ जा। उस द्वारका के मेन बाजार में जाके और न्यो बोला परमात्मा चद्दर बिछा लो भक्तो, चद्दर बिछा दो आप, चद्दर बिछा दिया। और न्यो उन सब सेठों को दिखा दिखा कर न्यो कह एक चांदी के रुपये आ करते, चांदी की मोटे मोटे कति कच्चे नए लाए रखे भगवान ने, दो तीन चार वो सारे जखे निकल कर रखी हो रहा भाई, चारों तरफ जो मिली दुनिया। अब कौन है भाई? वो महात्मा बोले सांवल सेठ तुम नट्टो थी युरा द्वारका का सेठ, 500 रुपये दर दिए नए नए, और कहा कि उस नरसी सेठ को कह देना उसका दास हाजिर है, चल करोड़ हुंडी लिख दे इस दास के नाम, सारी हुंडी लूंगा उसकी। न्यो कहकर अंतर जान हो गए, सबके सामने अदृश्य हो गए परमात्मा। तब उन द्वारका वाले लोगों का तो चेहरा भाई ये तो सचमुच भगवान थे। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निष्काम बगैर किसी इच्छा के, तू जैसे मैं कहता तू भक्ति दान धर्म करता रहे और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यह कथा इसलिए सुनानी पड़ी कि ये दानंद जैसे नास्तिक काल के दूत था यू, और उधर से वेदों को सत्य मानता है, वेदों को विपरीत टोटली ज्ञान सत्यार प्रकाश में भर रखे है, परमात्मा की महिमा से अंश भी परिचित नहीं था। ये देखिएगा ये सत्यार प्रकाश है, ये है प्रकाशक वैदिक कीर्ति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 276 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और एकादश समोल्लास 11वां समोल्लास 276 पृष्ठ पर। प्रसन्न करने वाला कहता द्वारका जी के रण छोड़ जी की, जिसने नरसी महिता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठी है, झूठ है? अब इस दानंद नास्तिक कहता है किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे और किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि कृष्ण जी ने भेजे, बता, ये नहीं मानता इन बातों को बिल्कुल भी। पुण्यात्माओं, ये दास इस मार्ग पर लगा ही लगा था, उसमें हमारे पास हमारे मकान में एक किराएदार रहा करता आर्य समाजी, टीचर था वो, शास्त्री था, प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर था पांचवी कक्षा का, तो वो वहां रहता था। बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, आर्य समाजी था, कट्टर और हर तरह से बहुत सभ्य आदमी था। उसमें आयु भी उसकी 50 से ऊपर यानी रिटायरमेंट के आसपास ही था, 55-56 वर्ष की आयु होगी। तो भगवान की जैसे पहले हमने जैसा ज्ञान था वैसा ही हम तो ये तो मानते थे कि भगवान जो चाहे कर सके, और कोई ये कह देता कि नहीं ये तो असंभव बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया, आर्य समाज के लोग और दयानंद की छुरी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। दयानंद जी ने तो परमात्मा को कति अपाहिज बना रखा है कि वो ना यूं कर सकता ना यूं कर सकता, बस कुछ नहीं कर सकता। इस दास ने उपदेश दिया 17 फरवरी सन 1988 में, और 1990 की बात है ये, 2 वर्ष बाद। ऊपर एक अलग से कमरा बनाया पूजा के लिए, एक गैलरी के ऊपर एकांत स्थान पर पूजा स्थल बनाया, और उसमें आमने सामने खिड़की, इधर आंगन में उधर गली में, और एक दरवाजा था ऊपर छत पे। कुछ पुस्तक छपवाई इस दास ने, ये नित्य नियम वाली भक्ति बोध जैसी पुस्तक छपवाई। तो उस समय तक इस दास को नाम उपदेश देने का आदेश नहीं था, और श्रद्धा पूरी थी परमात्मा में, पूरी निष्ठा थी, और ये छपवा करके बनवा करके गुरुदेव के पास भिजवाते थे, वो फिर अपने उपदेशियों को ऐसे फरी दिया करते थे। तो गुरुजी ज्यादातर पंजाब में रहते थे, और यहाँ छुड़ानी आते थे, केवल वहां समागम होता था, वर्ष में 2-3 बार वो आते थे। फिर क्या हुआ कि ये पुस्तक छपवा के कि गुरुजी आएंगे पंजाब से यहाँ, फिर वहां उनको दान कर देंगे, उनको देते थे। तो ऊपर एक तख्त रखा हुआ था, उसका बनाई थी गैलरी के ऊपर 5.5x15-16 फुट का है वो, उसमें वो पुस्तक रख दी 2000 तख्त के ऊपर। अच्छा, उससे पहले वो जो बनाया उसके हमने वो लगानी चाहिए, इसके ये जाली होती है ना लोहे की जाली, ये मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी साइज की होती है, ये जाली दोनों आमने सामने वाली खिड़कियों की झांकी की जंगलों की ये दास नाप कर ले गया। वह थी जैसे 2 फुट 8 इंच थी, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई थी 4 फुट, ऐसे वो नोट कर ले गया, और वहां दुकानदार जो लोहे वाला था उसको दे दी वह पर्ची के आप इस साइज की जाली काट दो। ये दास चला गया कुछ और सामान लेने, स्कूटर मेरे पास था। मैं वापस आया, उसके नौकर ने, लाला के नौकर ने वो दोनों जाली इकट्ठी पैक करके और बांध रखी, और बता दिया ये उठा लीजिए, उनके पेमेंट करके, और मैं स्कूटर का आगे रख के घर ले आया। आते ही मेरे बड़े वाला लड़का 12-13 वर्ष की आयु का था उस समय, और एक किराएदार रहता था बिहार का, उन दोनों से कहा कि भी आप ऐसे करो, इनको सीढ़ी लगा के और इनमें कील ठोक दो, बस सिंपल सी ला दो। उन दोनों ने वो जाली उठाई, लगाने लगे, उन्होंने बताया कि जी ये तो छोटी आ गई, जैसे 2 फुट 8 इंच था वो 2 फुट काट दी की तरह, लाला के नौकर ने दोनों ही ऐसी काट दी। और वो देखा सचमुच ऊपर तो सही साइज उनका, बराबर में जो था चौड़ाई थी वो 8 इंच छोटी। वहां भी कमाल हो गया, मैं बोला इसको तुम गलत ऐसे करके देखो, मेरे सामने यूं करके देखा वो तो और ज्यादा डिफरेंस हो गया। मैंने सोचा वहां भाई अब फिर देखेंगे, इसने तुम नो करो, इसको पैक करो और वापस रख दो। सर्विस का काम था, मैं 2-3 दिन आया नहीं, उनकी मम्मी ने वह नोकिन उठा के कई दिन के नीचे रखी थी, स्टोर में फेंक दी। वह मेरा भी बात ध्यान नहीं रही, रखी रही स्टोर में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, जैसे मार्च में बनाई हो, मार्च अप्रैल में, और फिर सितंबर में आया करते गुरुजी, तो रेनी सीजन पूरा हो लिया तो उस समय ये बनवाई पुस्तक भक्ति बोध और तख्त पर रख दी। अब उसमें क्या था, ग्लास के किवाड़ लगे हुए थे उस आंखियों के, और एक शीशा फूटा हुआ था। एक तो खिड़की बंद कर दी, दूसरी का एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें गए चूहे आके और ये पुस्तक काटने लग गए। तो फिर मेरा ध्यान आया कि भी क्यों ना इसके चारों तरफ वो लोहे की जाली लगा दें, मालिक ने लीला करनी थी ना, जाली तो और भी ला सके थे। मेरे दिमाग में क्या आया कि इन बच्चों को बोल दूं कि उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक का ला दें। कोई कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था थी नहीं, ला पा रहा था मैं कोई काम दूर, क्योंकि रोहतक से 70 किलोमीटर दूर हमारा काम वो होता था, नौकरी का जो केंद्र था, साइट थी, वहां जाता था। कई दिन लगातार इतना बोझ लोड रहा कि मैं नहीं कुछ ला पाया। तो मैंने सोचा अस्थाई इसको ऐसे लगवा देते हैं, मैं ऐसे कहकर चला गया। तो श्याम ने मेरा आने का जो समय हुआ ऑफिस से, 5 बजे सी 5:30 बजे आ जाते जैसे, तो उस समय उनके उसकी मम्मी ने ऊपर तो उतार के वह जाली नीचे डाल दी कि भाई इन लगा दो। वही दोनों जने, बड़ा लड़का और साथ में वो किराएदार, दोनों ने लगाने की चेष्टा की, ऐसे लगाते हैं जो नीचे बचेगा शायद उसको ओवरलैप करके इनको लगा देंगे। मैं अच्छी तरह समझा के गया था इनको। तो इन्होंने जब लगानी शुरू करी तो वह जाली पूरी की पूरी आ गई, यानी ऊपर से पूरी, ऊपर नीचे तो पूरी, और जो चौड़ाई में 8 इंच लगभग, मुझे आज भी याद है, इतना इतनी छोटी थी ये, इतना वो 8 इंच पूरी होगी और 6 इंच और आगे बढ़गी। मैं वापस आया, आते मुझे चिंता थी कि कदे बच्चा ने ना लगाई होते, अब लगवाऊंगा जाके। मैंने देखा जाली लगा रखी, मैं संतुष्ट हुआ। एक जाली वहीं पड़ी नीचे, मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली कोई और ले आए के बालक, वो कहने लगी नहीं ये वही थी जो मैंने ऊपर फेंक दी थी ये, और मैंने ही उतारी, उससे पहले और कोई किसी राखी जंगले का जाली ऐसी हमने लुआ भी नहीं रखी थी। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि ये मजाक करे मेरे साथ। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है, कि वो अभी लगा के खेलने गया है, वहीं खेत से थे उधर खेला करते बच्चे। मेरे पर नहीं डटा गया, मैं कहा ना जची नहीं यह बात है, मैं सोचा ये और लाया होगा, वह बदलवा तो नहीं लाए ये। वो कहने लगी इसकी माँ कि यो किसका बदलवा था, मैं 2 घंटे से कह रही थी भाई इस जाली ने लगा दो, तेरा पापा होगा फिर तुमने धमकाओगा, ईब आपके आने से पहले 10-20 मिनट पहले ला के खेलन गया, मैं लिया इसने बुला के, मेरे इसकी बात भी ना जची। बच्चे थे ये भक्ति में पहले से लगा दिए थे, छोटे ही लग गए थे। मैंने इससे कहा मेरे सिर पर हाथ रख, क्या बात होगी, क्या बात होगी पापा, माँ भाई कबीर परमात्मा ही कसम खा सच्ची बोलेगा, सच्ची बोलूंगा कि जाली तुम बदलवा के लाए हो, अक नहीं मेरी मम्मी ने उतार कर डाली थी, ये वही है, मैंने वो किराएदार बुलाया वही था, वो फैक्ट्री में लगा हुआ था, नव भारत फैक्ट्री है नट्स बोल्ट्स की, वो वही किराए पर रहता था, वो बुलाया। मैंने कहा भाई सच्ची बताइए ये क्या, कि आंटी ने उतार कर रखी थी मेरे सामने ही, ये वही जाली है। मैंने इनको कहा कि ये जाली वही थी जो पहले छोटी थी, फिर उनके ध्यान माई को हुई तो छोटी थी, और यह एक तो पूरी कैसे होगी, वो कहते पता नहीं। अब दोनों बच्चों की गवाही वो फाइनल होगी, क्योंकि मैं भी बेसिक भगवान का भगत था, लेकिन इन अज्ञानी अज्ञानियों ने पैरेलल ये अज्ञान साथ रखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उस अज्ञान आधार से भी इतना जोड़ा चतुर हो गए थे हम, मन मान नहीं रहा था कि ऐसा हो गया होगा, लेकिन वो हो गया। पुण्यात्मा उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। लोहे की जाली 14 इंच बढ़ा दी, थोड़ी भी नहीं। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे सीमेंटेड, यानी इतना विश्वास मालिक में जाग गया। और उधर से इस दास के मन में आया कि ये जो आर्य समाजी टीचर है, ये बहुत अच्छा स्वभाव का, बहुत अच्छी तरह बात करता था, बहुत अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति लगे था। भक्ति का डिस्कशन होती थी उसके साथ, तो वो कहता था, हम जिक्र करते थे जी ऐसे ऐसे आज सत्संग में हमने ये सुना, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। वो इन्हों का करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नाम उपदेश से पहले भी दास उसके साथ चर्चा कभी करता था, क्योंकि आस्था थी भगवान में। तो वो कहता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब कहने की बातें हैं। तो मैं भी मान लेता था भी चलना होता होगा, पर आस्था भगवान में गणी थी। पर जब मेरे साथ या बात बीत गई या घटना घट गई, मैं दास ने सोचा कि मेरी बात ने यो फाइनल मानेगा, और क्यों ना इस बूढ़ी आत्मा को भी आज विश्वास दिला दूं कि आप जो कह रहे हो वह बात ठीक नहीं। परमात्मा जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, इस बात को तुरंत मना करा करता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी असमंजस में पड़ जाता, भी ना होता होगा, लेकिन हमारे दिल से नहीं हटा थी कि भाई भगवान कर सकता है। पर अभी वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी नहीं, तो हम उनके विचारों को भी झुठला नहीं पाए थे। तो मैंने उसको बुलाया, अलग एक बैठक थी, अलग से कमरा था, वहां बुला लिया, बच्चे के हाथ आ गया, बैठ जाओ जी। तो मैंने उससे चर्चा छेड़ी, मैं कहने लगा जी आप इस बात को मानते हो कि द्रौपदी का चीर बट गया था? मैंने बोला क्या बात करते हो, आप तो बुद्धिमान हो, एजुकेटेड हो, ये कभी हो सकता है? मैंने कहा जी मैं बताऊं आपने, मैंने तो एक प्यार से कहा कि देखो ये सामने जाली लगी हुई है, और ये लगभग 8 इंच तक छोटी थी, कम थी साइज में, 8 इंच पूरी होगी, 4-5 इंच ये और आगे है, 6 इंच के करीब इतनी बढ़ गई, लगभग 14 इंच। एकदम लाल हो गया, बोला कैसी बात करता है, मैं नहीं मानता इस बात को, यानी कहता प्यार तो बोला करता, और कती लाल हो गया, और कहने लगा अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जो मानू। मैंने बच्चों की मम्मी बुला ली, यो लड़का बुला लिया, वो किराएदार बुला लिया, भाई आ जाओ आप बताओ कैसे हुआ, उन सारी कथा सुना दी। बोला मैं नहीं मानता। अब मैंने सोचा भाई क्यों, अब इसके साथ ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है, मैं चुप हो गया। अब मैं उसकी कैसे मानूं, पहले तो हम आकर दिया करता। अब उसने सोची भाई मकान मालिक रूस गया और एकदम वो पैतरा बदल गया, और मैं वैसे ही चुप हो गया, मैं भी गल के माथा मारे। कहने लगा देखो आप तो इंजीनियर हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, ये तो लोग भ्रम फैलाया करते थे, दुनिया को पाखंड में फंसाया करते थे ऐसी बकवास झूठ बोल करके, कहां द्रौपदी की साड़ी कभी बढ़ सकती है। मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। मैं नहीं बोला उसका हां ना ना, वो बोलता रहा। वो क्या बताता है कि महर्षि दयानंद जी एक बार योग अभ्यास कर रहे थे बंद कमरे में, और रसोइये ने दूध तैयार कर लिया। वो देखने गया था कि महाराज जी का योग यानी साधना पर समाधि लगा रहा था कमरे में, कि क्रिया पूरी हो ली हो तो दूध पिला दूं। वो झांक के देखा, झांकी में के देखा तो क्या कर रहा था महर्षि दयानंद, के जमीन से उठा, आसन पद्म लगा रखे थे, ऐसे आकाश में उड़ गया और ऊपर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, फिर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, ऐसा 7 बार किया। और वो रसोईया भाग आया और लोगों के बुला कर ले गया, देखो महर्षि क्या कर रहा है, सबने देखा, देखा वो मुझे कहे है, देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला फिर मैं भी मकती झूठ 100% झूठ, मैं तू करके दिखाई, न्यो कर लिया इसने, नव करके दिखाई तो मिला, तू शाना बहुत हो गया, मैं तो जाए अपना काम कर, हो लिया तेरा मेरा फैसला। अपने आत्माओं ये कोई बात हुई? कहते बिना विश्वास जो भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं तो क्या भक्ति करे हो, ये तो व्यर्थ आपकी साधना। एक समय एक नगर में एक गांव में दो साधक थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़े बड़े केस, एक गांव के जंगल में, और दूसरा अभी 4 वर्ष से ही साधक बना था, संत बना था, वो भी उसी जंगल के दूसरे कोने में बैठा था। एक देवदूत आया करता और वो देवदूत पहले दोनों से मिलता था, भगवान की चर्चा करता था, बड़ी अच्छी तरह समय व्यतीत हो रहा था, दोनों ही भगवान की महिमा खूब सुनाया करते थे और सुना करते थे देवदूत से। एक दिन भगवान के पास जाकर देवदूत ने कहा कि भगवान, एक नगर में आपके केवल 2 भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके ऊपर बिल्कुल समर्पित हैं। भगवान ने कहा, देवदूत, उनमें से एक ही भक्त है, दूसरा तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, वो भक्त नहीं है। अब देवदूत ने सोचा, भगवान गलत तो नहीं कह सकते। फिर देवदूत बोला, जी हाँ, वो होगा जो 40 साल से आपकी साधना कर रहा है। भगवान बोले, नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगे है ना, वो है भक्त, वो नहीं है। अब देवदूत असमंजस में पड़ गया, भाई वो तो बहुत अच्छे विचारों का आदमी है, और भगवान ने शायद समझण में फर्क रह गया। फिर बताया देवदूत ने, जी वो है ना जो इस साइड में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस हैं, और लगभग वो तो 60 वर्ष के आसपास है। भगवान बोले, हाँ उसी को कह रहा हूं, वो भगत को नहीं, भगत तो दूसरा है।